प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। फेडरल सरकार उन सभी दावों से पीछे हट गई है जिसमें कि कहा गया था कि किसी भी देश के स्थायी निवासी यानी कि परमानेंट रेसिडेंट्स अगले साल जनवरी से ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल में शामिल होने के पात्र होंगे। कल डिफेंस पर्सनल मिनिस्टर मैट केओ ने दावा किया था कि जो कोई भी 12 महीने से स्थायी निवासी है और सुरक्षा जांच पास कर चुका है वो एडीएफ में शामिल होने के लिए पात्र होगा। रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने एसपीएस को बताया है कि केवल चुनिंदा देश ही इस योजना के पात्र होंगे जिसमें कि कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमरीका शामिल है। बात करें पर्यावरण की तो क्लीन एनर्जी काउंसिल ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट सरकार और उद्योग निकायों को परमाणु ऊर्जा पर बहस में पड़ने के बजाय बड़े पैमाने पर सोलर परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर रही है। स्वच्छ ऊर्जा परिषद के मुख्य कार्यकारी केन थॉर्टन का कहना है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने के दावे अप्रमाणित हैं और संभावित रूप से उत्सर्जन में कटौती के प्रयास विफल कर सकते हैं। डॉक्टरों के लिए इंसेंटिव की शुरुआत के बाद से देशभर में जीपी पर बल्क बिलिंग की दरें लगातार बढ़ रही हैं। नए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल नवंबर में जीपी की 10 लाख से अधिक अतिरिक्त यात्राओं के लिए बल्क बिल भेजे गए थे। आंकड़ों की माने तो नवंबर से मई तक बल्क बिलिंग रेट 3.9% से बढ़कर 69% तक हो गया है। बजट अनुमान की सुनवाई से पता चला है कि एनडीआईएस खर्च का लगभग 5% यानी कि लगभग $2 अरब वास्तविक जरूरतों पर खर्च नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय विकलांगता बीमा एजेंसी के इंटेग्रिटी चीफ जॉन डाडो ने उन उदाहरणों की सुनवाई के बारे में बताया जहां एनडीआईएस प्रदाताओं ने कथित तौर पर प्रतिभागियों को दवाओं के लिए नकद देने के लिए मजबूर किया और उन्हें धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। संसद में आज पेश किए गए नए कानून फेक पोर्नोग्राफी साझा करने पर प्रतिबंध लगा देंगे जहां किसी व्यक्ति की छवि को अश्लील सामग्री पर सुपर इम्पोज किया जाता है। लिंग आधारित हिंसा से निपटने के सरकारी प्रयासों के हिस्से के रूप में जो लोग डीप फेक इमेजरी साझा करते हैं उन्हें अब 7 साल तक की सजा का सामना करना पड़ेगा। बात करें भारत की तो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए चुन लिए गए हैं। हालांकि इस बार उन्हें गठबंधन की सरकार का नेतृत्व करना होगा। श्री मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने 286 सीटें जीती हैं। श्री मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी ने केवल 240 सीटें जीती हैं, जो कि 2019 में पिछले चुनाव में जीती गई 303 सीटों से कम है और इसलिए उन्हें इस बार गठबंधन का सहारा लेना होगा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का कहना है कि भारतीयों ने इस चुनावी परिणाम के माध्यम से श्री मोदी को एक संदेश भेजा है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।